जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवन चारी यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय समस्त भक्त वृंद की जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे माताजी एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना एतद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम् वांछन्ति एवै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम् गायन्त आनंद समुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे एकांतिनः अनन्य भक्त जिन्हें कृष्ण चेतना के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती यस्य जिस भगवान का न नहीं कंचन कुछ अर्थम आशिषः वांछन्ति इच्छा करते हैं ये जो भक्त वै निस्संदेह भगवत प्रपन्ना श्री भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत अति अद्भुतम जो अद्भुत हैं तच्चरितम श्री भगवान के कार्यकलाप सुमंगलम तथा जो सुनने में अत्यंत शुभ हैं गायंतः कीर्तन तथा श्रवण द्वारा आनंद दिव्य आनंद रूपी समुद्र समुद्र में मग्नाह डूबे हुए तम उनको अक्षरम अक्षर ब्रह्म ब्रह्म परम दिव्य पर ईशम पर पुरुषों के स्वामी को अव्यक्तम अदृश्य अथवा मन तथा इंद्रियों से अनुभव न किए जा सकने वाले आध्यात्मिक दिव्य योग भक्ति योग द्वारा गम्यम प्राप्य भक्त्यामाम अभिजानाति अति इंद्रियम भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे सूक्ष्मम सूक्ष्म इव सदृश अति दूरम अत्यंत दूर अनंतम असीम आद्यम आदि कारण को परिपूर्णम सर्वथा पूर्ण ईडे मैं नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अद्भुत तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त श्री भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूं, अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करता हूं जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी है और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। तात्पर्य अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा अनुकूल होकर तथा सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी नहीं मांगना होता, किंतु गजेंद्र परिस्थितिवश अविलंब वर मांग रहा था क्योंकि उसके समक्ष बचाव का कोई अन्य उपाय नहीं था। कभी कभी जब कोई विकल्प नहीं रहता तो शुद्ध भक्त श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहने के कारण किसी न किसी वर के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त किया जाता है। जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सदैव श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है वह सदैव ऐसे दिव्य पद पर स्थित रहता है जहां उसे किसी भी भौतिक लाभ की याचना नहीं करनी पड़ती। जब तक कोई नितांत शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक वह संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने तथा नाचने से मिलने वाले दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकता। ऐसा आनंद सामान्य भक्तों को मिलना संभव नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखलाया है कि किस तरह सहज रूप में भाव विभोर होकर कीर्तन श्रवण तथा नृत्य के द्वारा दिव्य आनंद उठाया जा सकता है। यही भक्ति योग है। अतएव गजेंद्र ने कहा आध्यात्मिक योग गम्यम, जिससे सूचित होता है कि जब कोई इस दिव्य पद पर स्थित न हो तब तक वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान पास पहुंच सकने का वर अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह वर सबको प्रदान किया है। यहाँ तक कि उन पतितात्माओं तक को भी जिनके पास आध्यात्मिक जीवन की कोई भी विरासत नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसा ही देखा जाता है। अतएव भक्ति योग का मार्ग वह निर्मल विधि है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्त्याहम एकया ग्राह्यः, केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंच सकता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तत्श्रणु। हे पृथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्णतया युक्त होकर योगाभ्यास करने और मन में मुझ में अनुरक्त करने से तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर जान सकते हो। मात्र कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त होने तथा निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने से मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संशय रहित होकर पूरी तरह जान सकता है। हरे कृष्ण। हम लोग गजेंद्र की स्तुति सुन रहे हैं और ये 20वां 21वां श्लोक, दो श्लोक यहाँ पर आज प्रस्तुत किया जा रहा है। गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की इस अध्याय में, 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय में 28 श्लोकों में गजेंद्र ने स्तुति की है। तो ये जो श्लोक आया है इसका पीछे के श्लोक से भी संबंध है। गजेंद्र ने पिछले श्लोक में कहा है, यम धर्म धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशो रात्यपि देहम अव्ययम् करोति मेदभ्रवदयो विमोक्षणम्। तो गजेंद्र कहते हैं पिछले श्लोक में कि हे भगवान, मैं आपसे इस ग्राह से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रकट रूप में ये दिखता है कि गजेंद्र को ग्राह पकड़ा हुआ था और ग्राह से मुक्ति के लिए गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने यह भी बताया कि गजेंद्र कह रहे हैं विमोक्षणम, विशेष मोक्षणम, मुझे आप अपने धाम में स्थान दीजिए। किम चाशिशो रात्यपि देहम अव्ययम्, भगवान के पास जो कोई भी जो कुछ भी इच्छा लेकर जाता है उसे भगवान वो उस इच्छा की पूर्ति करते हैं और साथ साथ उसे अव्यय पद, अपने धाम में भी पद प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक में गजेंद्र यह कहना प्रारंभ किए कि ऐसे भक्त जो आपसे कुछ इच्छा करके आपकी प्रार्थना करते हैं वे तो आपके अव्यय पद को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं आपके जो एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो एकांतिक भक्त होते हैं। तो इन भक्तों के संबंध में गजेंद्र एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। ये भक्त कैसे होते हैं? एकांतिनो, यह एकांतिक भक्त होते हैं और ये भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। न कंचनार्थम, क्यों नहीं चाहते? इसका श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी टीका में वर्णन किया, क्योंकि ये भगवत प्रपन्ना, क्योंकि ये भगवान में प्रपन्न होते हैं। तो ये गुण बता रहे हैं गजेंद्र कि ऐसे एकांतिक भक्त चूंकि भगवान में शरणागत होते हैं, ये भगवान से न कंचनार्थम, ये कुछ भी नहीं चाहते। और आगे कहते हैं, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नाः। क्योंकि भगवान के जो गुण हैं, जो चरित्र हैं, वो अति अद्भुत हैं। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, सुष्ठु मंगल प्रदान करने वाले, मंगल का अर्थ होता है जो पाप को नाश कर दे और भगवत भक्ति को प्रदान करे, ऐसे चरित्र का गायंत आनंद समुद्र मग्ना। ये भगवान के ऐसे चरित्र का गान करके आनंद समुद्र में ही मग्न रहते हैं ऐसे एकांतिक भक्त। पर मैं तो अभी इस ग्राह से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा गजेंद्र कह रहे हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण ईडे। इसमें भगवान के लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया गजेंद्र के द्वारा, और इन शब्दों की व्याख्या इतने कम अवधि, समय की अवधि में संभव नहीं है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ शब्दों को समझने का प्रयास किया जा सके। तो इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में गजेंद्र भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते करते हुए कहते हैं तम अक्षरम। भगवान कैसे हैं? अक्षरम। अक्षरम का अर्थ होता है जो कभी क्षर नहीं हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो। भगवान के गुणों का कभी क्षय नहीं होता, भगवान के धाम का कभी क्षय नहीं होता, भगवान के परिकरों का कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उनको कहा जाता है अक्षरम। भगवद गीता में भी भगवान ने अपने लिए यह शब्द का प्रयोग किया कि मैं क्षर और अक्षर। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर इन सबसे परे हूं, और इसलिए लोग मुझे वेद में और लोक में मुझे पुरुषोत्तम रूप में जाना जाता है। तो इसलिए भगवान अक्षर हैं। तम अक्षरम ब्रह्म, भगवान परब्रह्म है, इसलिए उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया ब्रह्म। ब्रह्म वह वस्तु है जो सबसे बृहत हो, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान सबसे बड़े हैं और परब्रह्म है। और उनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया परेश, परम परेश। पर शब्द का प्रयोग कई शब्दों के साथ किया जा सकता है अन्वय में, इसलिए परम परेशम भगवान के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया कि वो परम परेश हैं। इस जगत में कई ईश हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब ईश हैं, ये सब नियमता हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? तो भगवान के लिए गजेंद्र कहते हैं परम परेश। ये सारे ईशों के ईश हैं, परम परेश। और अव्यक्त, व्यक्त का अर्थ होता है जब किसी गुण, गुण के द्वारा किसी वस्तु की अभिव्यक्ति हो, उसे कहते हैं अव्यक्त, व्यक्त, व्यक्तित्व। जैसे हमारा यह शरीर, किसी को हम कहते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है जब भौतिक पदार्थों के द्वारा और भौतिक गुणों के द्वारा जब किसी आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है तो उसको कहते हैं व्यक्त। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान को कह रहे हैं गजेंद्र अव्यक्त। भगवान अव्यक्त हैं, भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं है, कोई भी भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं अव्यक्त। और भगवान के लिए तो यदि कोई ऐसा सोचे कि भगवान अव्यक्त हैं, भगवान अतीन्द्रिय, एक और शब्द का प्रयोग किया गजेंद्र ने, वो अतीन्द्रिय। अति का अर्थ होता है पार, और इंद्रिया, इंद्रिया मतलब हमारी जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया या कर्मेंद्रिया। तो उनके लिए भगवान गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे हैं। इसका अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा उन्हें नहीं जाना जा सकता, लेकिन फिर भी गजेंद्र ने कहा आध्यात्मिक योग गम्य, जिसका प्रभुपाद ने कहा और श्रील विश्वनाथ ठाकुर अन्य आचार्यों ने कहा, आध्यात्मिक योग का अर्थ है भक्ति योग। आध्यात्मिक शब्द में दो शब्द हैं, अधि और आत्म। अधि का अर्थ होता है अधिकार, और आत्मा का अर्थ, आत्म का अर्थ है आत्मा। तो अध्यात्म योग के द्वारा गम्य है, मतलब आत्मा का अधिकार जो है भगवान की सेवा, उस सेवा के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा, उस भक्ति योग के द्वारा भगवान गम्य है, ऐसा गजेंद्र कह रहे हैं। और कह रहे हैं सूक्ष्म इवाति दूरम, भगवान अत्यंत सूक्ष्म है, जैसे आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान आत्मा से भी अत्यधिक सूक्ष्म है। और इवाति दूरम, भगवान परमात्मा रूप में स्थित हैं लेकिन प्रतीत होते हैं, अति दूरम इव, प्रतीत होते हैं कि बहुत दूर हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग कहते हैं ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला नहीं देखेगा, हृदय में बैठा हुआ वही देखता रहता है। तो भगवान के लिए यह शब्द का प्रयोग किया गजेंद्र ने, इव अति दूरम, अति दूर दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन है वो बहुत नजदीक। और अनंतम आद्यम परिपूर्ण मीडे, भगवान अनंत हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनके अनंत लीलाएं हैं, उनके अनंत नाम हैं, उनके अनंत धाम हैं, उनके अनंत परिकर हैं, इसलिए अनंतम आद्यम आदि पुरुष हैं, उनसे ही सब वस्तुओं का निर्माण होता है। और परिपूर्णम, परितः पूर्णम, वो सब प्रकार से पूर्ण है, उनका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उनका नाम अच्युत कहा जाता है। और ईडे, ईडे का अर्थ है स्तौमी, मैं उनकी स्तुति करता हूं। तो इस प्रकार एक एक श्लोक, एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भागवत है, कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय, यह जो भागवत है श्रीमद् भागवत, यह कैसा है? कृष्ण तुल्य भागवत, यह कृष्ण के समान है, यह कृष्ण के समान ही विभू है, और कृष्ण के समान ही सर्व आश्रय को प्रदान करने वाला है। कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति शब्दे नाना अर्थ कहे, इसलिए भागवत के प्रति श्लोक और प्रति शब्द इसके नाना अर्थ कहे जा सकते हैं। तो अनंत इसकी व्याख्या की जा सकती है इन एक एक शब्दों की, लेकिन समय की अवधि नहीं है, इसलिए हम अपनी व्याख्या या हम अपनी जो चर्चा है कुछ शब्दों पर ही रखेंगे। इसलिए भागवत में कहा गया कि भागवत को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन् पारम हम समेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम तत् श्रृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। तो इन श्लोकों पर श्रृण्वन् सुपठन विचारण सुष्ठु पठन अच्छी प्रकार से इसे पढ़ना और विचारण विचार करना, यही भागवत को पढ़ना है, यही भागवत की सेवा है। तत् श्रृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। और इस प्रकार से जब भागवत को हम पढ़ते हैं तो भक्त्या विमुच्ये नरः हम मुक्ति पद को, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इनमें से कुछ श्लोकों के विषय में चर्चा करेंगे, जैसा कि आचार्यों ने जो कुछ भी अपनी टीकाओं में लिखा है उसके अनुसार। तो श्रीधर स्वामी यहां कहते हैं कि गजेंद्र उन भक्तों की वंदना कर रहे हैं जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। तो एकांतिक भक्तों के क्या क्या लक्षण हैं? एकांतिक भक्तों के लक्षण के विषय में गजेंद्र ने तीन पदों का प्रयोग किया एक श्लोक में। न कंचनार्थम, एकांतिक भक्त जैसे जो होते हैं उनका सबसे पहला गुण होता है कि वह भगवान से कुछ भी मांगते नहीं है। यह एकांतिक भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण और सबसे पहला गुण है। इसलिए गजेंद्र कहते हैं एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम। भगवान के जो एकांतिक भक्त होते हैं वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। जैसा कि कुलशेखर महाराज अपने प्रार्थना में कहते हैं, नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व अद्वंद्व हेतो कुंभी पाकम गुरुम अपि हरे नारकम नापने तुम। अपनी प्रार्थना में कुलशेखर महाराज कहते हैं, नाहम वंदे तव चरणयोर। भगवान के भक्त ना सुख की इच्छा करते हैं और ना दुख की निवृत्ति की इच्छा करते हैं। तो हे कृष्ण, कुलशेखर महाराज कहते हैं, नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व अद्वंद्व हेतु। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस द्वंद्व अर्थात ये सुख दुख मान अपमान से मुझे मुक्ति प्राप्त करा दीजिए। नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व अद्वंद्व हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। मैं कुंभी पाक नरक से भी मुक्ति नहीं चाहता, उसमें अनंत कष्ट है। लेकिन भक्त कहता है कि नहीं, कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम, मुझे उस नरक से भी मुक्ति नहीं चाहिए। रम्या रामा मृदु तनु लता, रम्या रामा, मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता। रम्या नामक जो वहां अप्सराएं हैं उनको भी भोगना नहीं चाहता। रम्या रामा मृदु तनु लता नंदने नापिरंतुम, और ना मैं नंदन कानन में जाना चाहता हूं। तो तुम क्या चाहते हो? तो भगवान का भक्त कहता है, भावे भावे हृदय भवने भाव येयम भवंतम। हे कृष्ण, भावे भावे मुझे अनंत जन्म दीजिए, और उन जन्मों में मैं क्या करूं? हृदय भवने, मैं आपको अपने हृदय भवन में निवास करके, भाव येयम भवंतम, आप मेरे हृदय भवन में निवास कीजिए और आपका ही मैं अनंत, आपके अनंत गुणों का मैं चिंतन करता रहूं। तो भगवान का जो भक्त होता है न कंचनार्थम, वह कुछ भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत तो यहां तक चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान शिव के द्वारा भक्तों की वंदना करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि न कंचनार्थम, भगवान के भक्त कुछ भी नहीं चाहते, वो सुख भी नहीं चाहते, दुख भी नहीं चाहते, दुख से निवृत्ति भी नहीं चाहते। तो नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। भगवान शिव भक्तों की वंदना करते हुए कहते हैं कि स्वर्गे अपवर्गे नरकेशु, स्वर्ग में अपवर्ग में नरक में अपि तुल्यार्थ दर्शिना, भगवान के भक्त तुल्य अर्थ दर्शिना, तुल्य मानते हैं उन्हें स्वर्ग नरक अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है पवर्ग से पार, मुक्ति की जो स्थिति है उस तीनों स्थिति को भगवान के भक्त तुल्यार्थ दर्शिना। जो नारायण परा सर्वे, जो नारायण के परायण होते हैं वे भक्त तुल्य दर्शन करते हैं इन तीनों स्थितियों को। तो ये भगवान के भक्त हैं। इसलिए गजेंद्र कह रहे हैं कि एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, भगवान के भक्त न कंचनार्थम कुछ भी इच्छा नहीं करते। एक कथा आती है, दो भक्त थे राका और बाका, दोनों दंपति थे। राका बाका के संबंध में एक कथा आती है कि नामदेव महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। राका बाका दोनों दंपति अत्यंत गरीब और दरिद्रता को प्राप्त थे। वे लकड़ी काटने के लिए जाते और उस लकड़ी से जो कुछ भी उन्हें धन प्राप्त होता, उस धन का आधा हिस्सा भगवत सेवा में लगा देते और आधे हिस्से से अपना निर्वाह करते थे। तो ऐसे राका बाका को नामदेव जब देखे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये आपके भक्त इतने दरिद्र अवस्था में, आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते? तो भगवान ने उनसे कहा कि मैं इन्हें कुछ दूं भी तो भी ये नहीं लेंगे। तो नामदेव महाराज ने कहा आप दे कर तो देखिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने कहा कि ठीक है देखना, मैं इन्हें दे करके देखता हूं। तो राका बाका के लिए भगवान ने कई स्वर्ण मुद्राएं उनके रास्ते में, जिस रास्ते से वो जाते, जिस रास्ते से वो लकड़ी काटने के लिए जाते, उस रास्ते में ही कई स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तो राका पहले गया, राका आगे चल रहे थे, तो राका ने जब देखा, राका रास्ते में चलते हुए जब आए सामने, देखे कि बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं। तो जैसे उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने मिट्टी से ढक दिया। क्यों ढक दिया? वे सोच रहे थे कि बांका जो उनकी पत्नी थी, वे जब सामने आएंगी और वे यदि स्वर्ण मुद्राओं को देख लें तो कहीं उनका मन विचलित ना हो जाए और कहीं धन में उनकी मति ना लग जाए, इसलिए उन्होंने मिट्टी से उसे ढक दिया। अभी मिट्टी से ढक ही रहे थे कि पीछे से उनकी जो पत्नी थी वे आ गई बांका, और उन्होंने देख लिया। तो उनसे पूछा, बांका ने अपने पति से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी से किस वस्तु को ढक रहे हैं? तो राका बोले कि अच्छा, ये स्वर्ण मुद्राएं कुछ मुझे मिल गई थी, मेरे मन में ये संशय हुआ कि कहीं तुम इसे देख करके विचलित ना हो जाओ। तो बांका कहती है कि कहां है स्वर्ण मुद्राएं, मैं तो मिट्टी ही देख रही हूं। तो ये भक्त का लक्षण है, राका बाका को भगवान ने स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की और उन स्वर्ण मुद्राओं को राका बाका ने नहीं लिया। और बांका तो यहां तक कहती है कि आप तो इसे स्वर्ण भी देख रहे हैं, मैं तो इसे मिट्टी ही समझती हूं। इसलिए भगवान कैसे भक्त होते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, वे कुछ भी नहीं चाहते। बाद में वे मिट्टी से ढक करके गए, राका बाका जाकर के लकड़ी काटे। भगवान ने एक और कार्य किया था, भगवान ने उनके लिए लकड़ी काट करके बांध करके रख दी वहीं पर। तो राका बाका आगे गए, देखे कि लकड़ी बंधी पड़ी है, सारी लकड़ी कटी पड़ी है और सारी लकड़ी बांध करके रखी है। तो राका बाका सोचते हैं कि अवश्य किसी व्यक्ति का यह धन होगा, मुझे यह धन लेना नहीं चाहिए। और वे बिना लकड़ी के वापस चले गए और सोचने लगे कि आज हमने धन का दर्शन किया, इसलिए हमें आज धन प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। भगवान की यही इच्छा है क्योंकि हमने धन का दर्शन कर लिया। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, ये भगवान के भक्तों का गुण है। तो दूसरा गुण भगवान के भक्तों में है जो गजेंद्र कह रहे हैं, भगवत प्रपन्ना। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवत प्रपन्न होते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी पाद ने प्रपन्न शब्द की व्याख्या करते हुए कहा सेवितवंतः। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। इसलिए इस भगवान के प्रपन्न भक्तों में क्या गुण देखा जाता है, दो मुख्य गुण देखा जाता है भगवान के प्रपन्न भक्तों में। एक गुण है कि वे भगवान के अलावा किसी और को नहीं स्वीकारते। वो किसी भी देवी देवता, किसी जिन, किसी व्यक्ति, किसी पुरुष, इसकी आराधना नहीं करते, इनके ऊपर शरणागत नहीं होते। ये भगवान के भक्तों में यह गुण देखा जाता है। और दूसरा गुण होता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए वह आश्रय केवल और केवल भक्ति का ही लेते हैं। ये प्रपन्न भक्तों का गुण होता है। जो भगवान के प्रपन्न भक्त हैं, जिनके विषय में गजेंद्र यहां वर्णन कर रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, वे भगवान के प्रति ही समर्पण रखते हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल भक्ति में ही विश्वास रखते हैं। ऐसे ही भक्त है। ऐसे ही भक्तों का वर्णन श्री श्रीमद् भागवत में और श्री चैतन्य चरितामृत में किया गया है। एक भक्त भक्त कवि कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भजंत भव भीता अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंद परम ब्रह्म। ऐसे भगवान के भक्त केवल भगवान में मति रखते हैं, इसलिए कहते हैं कोई व्यक्ति श्रुति में परे, कोई श्रुति का आश्रय लेता है, स्मृति में परे कोई स्मृति का आश्रय लेता है, भारतम अन्ये भजंत भव भीता कोई महाभारत आदि पढ़ करके भवभीत होकर के महाभारत आदि का आश्रय लेता है, लेकिन मैं किसका आश्रय लेता हूं? रघुपति उपाध्याय चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। मैं केवल उन नंद महाराज का आश्रय लेता हूं जिसके आलिंद में, जिनकी गोद में नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण परब्रह्म खेल रहे हैं। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त, वे केवल और केवल भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं और केवल भगवान में वह आश्रय रखते हैं। एक भक्त यहां तक कहते हैं, त्यजंतु बांधवा सर्वे निंदंतु गुरुवो जना, मेरे सारे बंधु मुझे त्याग कर दें, निंदंतु गुरुवो जना, मेरे जो बड़े लोग हैं मुझे निंदा करने लगे, तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम, फिर भी परमानंद गोविंद ही मेरे जीवन है। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो केवल और केवल भगवान का आश्रय लेते हैं, और ऐसे भक्त अपनी भक्ति की प्राप्ति के लिए, अपने आश्रय की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी केवल भक्ति का ही सहारा लेते हैं। इसीलिए श्री कुलशेखर महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं, आम्नायाभ्यसनानिरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि पूर्तविधयः सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्दाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायणः। तो अब भगवान के भक्त अन्य आश्रयों का त्याग, अन्य साधनों का त्याग किस प्रकार कहते हैं करते हैं, तो कुलशेखर महाराज कहते हैं, आम्नाया भ्यसनानि अरण्यरुदितम्। आम्नाय का अर्थ होता है वेद, वेद और वेद की ऋचाओं का अभ्यास यह किस प्रकार है, तो भगवान के भक्त कहते हैं अब आम्नाया अभ्यासनानि अरण्यरुदितम्, वह अरण्य में रोदन के समान है। जैसे कोई व्यक्ति किसी जंगल में जाके रोए तो उसके रोदन को कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो कुलशेखर महाराज कहते हैं आम्नाया भ्यसनानि अरण्य रुदितम्, वेदों का अभ्यास वह अरण्य का रोना हो जाता है। और मेध छेद फलानी पूर्त विधय वेद व्रतान्यन्वहम, वेद के जो व्रत, वेदों में कई प्रकार के व्रत दिए गए हैं, वह व्रत भगवान के भक्तों के लिए, भगवान की भक्ति के बिना यदि वह व्रत किया जाए तो वह किस प्रकार हो जाता है? मेधश्छेद, वह केवल चर्बी घटाने का कार्य करेगा, ऐसा कहते हैं कुलशेखर महाराज, उसके अलावा वह कोई कार्य नहीं करेगा। मेधश्छेद फलानी पूर्त विधया सर्वम हुतम भस्मनी, जो पूर्त कार्य कुआं खुदवाना या किसी को दान देना, किसी को भोजन कराना, यह सारे पुण्य के जो कार्य है भगवान की भक्ति के बिना या भक्त के लिए किस प्रकार के हो जाते हैं, तो कहते हैं पूर्त विधयः सर्वम हुतम भस्मनी, वह भस्म में, राख में घी डालने के समान है। राख में कोई यज्ञ करे तो उसका क्या फल होता है? और तीर्थों का अवगाहन यह कैसा होता है? कोई जाके तीर्थ में स्नान करे, सरोवरों में स्नान करे, वह भगवान की भक्ति के बिना यदि हो तो वह भगवान के भक्त क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं तीर्थानाम अवगाहनानि च गज स्नानम विना यत् पदा, तीर्थों का जो अवगाहन है, तीर्थों में जो स्नान है, यदि वो भगवत भक्ति के बिना हो तो भगवान के भक्त कहते हैं वह गज स्नान के बराबर है। जैसे कोई हाथी स्नान करता है तो उस हाथी के स्नान का क्या लाभ? इसलिए वो कहते हैं द्वंदाम भोरुह संस्मृतिम विजयते देवः स नारायणः, भगवान के चरण कमलों की संस्मृति के बिना जितने भी साधन बताए गए हैं उन सब साधनों को भगवान का भक्त त्याग करके केवल भगवान के श्रवण और कीर्तन में लग जाता है। इसलिए गजेंद्र कहते हैं गायंत आनंद समुद्र मग्ना, भगवान के भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन के गायन के आनंद में ही समुद्र, उनके समुद्र में ही मग्न हो जाते हैं। ये भगवान के एकांतिक भक्त का दूसरा लक्षण है, न कंचनार्थम और भगवत प्रपन्ना। तीसरा लक्षण इसी श्लोक में गजेंद्र कह रहे हैं, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। अच्छा, ये जो लक्षण है कि भगवान के भक्त एकांतिक होते हैं, वह दूसरों का आश्रय लेते हैं, यह गजेंद्र में भी प्राप्त होता है। गजेंद्र के सामने जब गजेंद्र यह प्रार्थना कर रहे थे तो गजेंद्र के सामने सारे देवी देवता सामने खड़े थे, ब्रह्मा खड़े थे, इंद्र खड़े थे, चंद्र खड़े थे, वरुण खड़े थे, सब उनके सामने खड़े थे। देवता आदि सामने आते और कहते, गजेंद्र मैं तुम्हें छुटा सकता हूं, इस ग्राह से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन गजेंद्र उनसे सहायता नहीं लेते। और गजेंद्र जब प्रार्थना कर रहे थे तो गजेंद्र कहते, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, मैं उनसे सहायता चाहता हूं, वे उनसे सहायता चाहता हूं जिनके भक्त एकांतिक होते हैं। तो ब्रह्मा और शिव सोचने लगे, हमारे भक्त कैसे होते हैं? तो हमारे ब्रह्मा जी के भक्त हुए हिरण्यकशिपु, कितने एकांतिक थे हिरण्यकशिपु, और वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, और कितनी इच्छाएं थी हिरण्यकशिपु के पास, पूरी सूची लेकर के आया था हिरण्यकशिपु। तो अपने आप ब्रह्मा जी चले गए कि मेरे भक्त तो एकांतिक नहीं होते हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, वो प्रपन्न होते हैं। तो भगवान शिव सोचने लगे, मेरे भक्त कितने प्रपन्न होते हैं, मुझसे वर लेकर के मुझे ही मारना चाहते हैं। तो भगवान शिव भी पीछे हट गए। और अगले श्लोक में गजेंद्र यहां तक कहने लगे, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोका शराचरा नाम रूप विभेदे न फलगव्याचकलयाकृता, जिनसे ब्रह्मा शिव आदि देवता, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोका चराचरा जिनसे चर अचर जीव निर्यांति संयांति असकृत स्वरोचिशः, उनसे ही सब कोई निकल करके आते हैं। तो सारे देव देवता समझ गए, मुझसे तो ब्रह्मा नहीं आते, मुझसे तो भगवान शिव निकल के नहीं आते। यथार्चि शोग्निर सवितुर गभस्तयो निर्यांति संयांति असकृत स्वरोचिशः। तो इस प्रकार से जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं तो गजेंद्र भी एकांतिक भक्त हैं। गजेंद्र केवल और केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन्हीं से सहायता चाहता हूं जो भगवान जिनके भक्त एकांतिक होते हैं, जो ब्रह्मा शिव आदि के भी नियमता है, मैं उनसे ही सहायता चाहता हूं। तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण हो गया, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम भगवत प्रपन्ना, वह केवल और केवल भगवान से सहायता चाहते हैं। तीसरा गुण वर्णन कर रहे हैं गजेंद्र, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंतम आनंद समुद्र मग्ना। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के अति अद्भुत गुणों पर ऐसे रीझ जाते हैं कि गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वो आनंद रूपी समुद्र में मग्न रहते हैं हमेशा। ऐसा उदाहरण भागवत में अनन्य भक्तों में, अनंत भक्तों में देखा जाता है। भागवत में श्री ध्रुव महाराज भगवान की कथा के संबंध में कहते हैं, भगवान की कथा में मैं इतना मग्न हो रहा हूं कि हे कृष्ण, प्रार्थना करते समय ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे केवल और केवल आपके भक्तों का संग दीजिए, जिन भक्तों के संग में मुझे आपकी कथा प्राप्त हो। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्बण उरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथा मृत पान मत्तः। हे कृष्ण, मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, जहां आपकी कथा प्रसंग वही प्रवाहित हो रही हो। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, ऐसे अमल आशय अमल हृदय वाले भक्तों का मुझे संग दीजिए। क्यों क्यों ऐसा संग चाहते हो? क्योंकि येनांजसोल्बणा उरु व्यसनम भवाब्धिम, यह जो भव सागर है इसको मैं अंजसा बहुत आसानी से, ये उल्बण व्यसनम दुख से भरा हुआ यह संसार सागर मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। किस प्रकार से पार कर जाऊंगा? नेश्ये भवद गुण कथा, आपकी गुण कथा के द्वारा अमृत पान मत्ता, ऐसे आपके अमृत गुण कथा के अमृत का पान करके मैं मतवाला होकर के आसानी से इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। इसलिए मुझे भगवान के भक्तों का संग दीजिए, जहां मुझे भगवत कथा प्राप्त हो। इसलिए गजेंद्र कह रहे हैं कि ऐसे भक्त, एकांतिक भक्त कथा लोलुप हो जाते हैं, और ऐसे कथा लोलुप होते हैं कि 3 दिन बाकी था मृत्यु को परीक्षित महाराज के, और 3 दिन बाकी है दशम स्कंद में जब भगवान की लीला का गान करना प्रारंभ किए सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज कहते हैं, नैशाति दुस्साहस शुन्मा त्यक्तोदपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम बोजम च्युत हरि कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे अब ये जो शुधा है, शुत अर्थात जो भूख प्यास अब मुझे बाधित नहीं कर रही है, अब आप धारावाहिक रूप से भगवत कथा का वर्णन करते चलिए, क्योंकि मुझे ये भूख प्यास नहीं लग रही है। तो भगवत कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने एक लीला का वर्णन किया, छठे अध्याय में, दशम स्कंद के छठे अध्याय में पहली भगवान की लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने पूतना उद्धार की लीला का वर्णन किया। और वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शुनियात श्रद्धया मृत्यु गोविंद लभते रतिम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, य एतत् पूतना मोक्षम, जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, ये अर्भक कृष्ण की अद्भुत लीला का जो भी श्रवण करता है, शुनियात श्रद्धया मृत्यु, वह मर्त्य श्रद्धा से यदि एक लीला का वर्णन सुन ले पूतना लीला का, गोविंदे लभते रतिम, वह गोविंद में रति प्राप्त कर जाता है। सुखदेव गोस्वामी इतना बोल करके शांत हो गए। सुखदेव गोस्वामी सोचे कि एक लीला का वर्णन कर दिया परीक्षित, अब तुम्हें मरना है, तीन दिन बाद तुम मरने वाले हो, अब ज्यादा समय नहीं है भगवत कथा को कहने के लिए, इसलिए एक लीला का वर्णन कर दिया, अब तुम्हें गोविंद में रति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान का भक्त परीक्षित कथा लोलुप, ऐसा कथा लोलुप भगवान का भक्त परीक्षित कि वो कहते हैं कि मैं इतने से प्रसन्न नहीं हूं, और भगवान की कथा के लिए और प्रार्थना करने जाते हैं। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐसा वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, और सातवें अध्याय के पहले श्लोक से परीक्षित महाराज को लगा कि अब तो भगवान की कथा बंद करेंगे सुखदेव गोस्वामी, एक कथा कही दिए, उसकी फलश्रुति में हो गया कि गोविंद लभते रतिम, परीक्षित महाराज को रति प्राप्त हो भी गई। लेकिन रति प्राप्त हो जाने के बाद भी जो भगवान का भक्त होता है वो कथा में इतना लोलुप होता है, वह कहता है, यत् शृण्वति अपयति अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा भक्ति हरौ तत् पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद वद मन्यसे चेत। हे सुखदेव गोस्वामी वद, आप कहिए और कहिए, क्योंकि मैं और सुनना चाहता हूं। क्योंकि भगवान की जो कथा है, यत् शृण्वति अपयति अरतिर्वितृष्णा, ये भगवान की कथा जो है, यह अरति जो भगवान की कथा में रति नहीं है, इसको भी अपैती, इसको लेके हटा देती है। सत्वम च शुद्धयति, हृदय को शुद्ध करती है। सत्वम च शुद्धयति अचिरेण पुंसा, और बहुत जल्दी शुद्ध करती है, और भक्तों में सख्य प्रदान करती है। तदेव हारम, ऐसे भगवान की कथा, अनेक अनेक कथा, ये फूल के समान है, उस हार रूपी कथा, ऐसे कथाओं का हार बना करके मुझे दीजिए। वदमन्य से चेत, मुझे प्रदान कीजिए, और सुखदेव गोस्वामी बोलिए। तो ऐसा होता है भक्त कथा लोलुप, इसलिए अकिंचन भक्त, एकांतिक भक्त का ये गुण बता रहे हैं गजेंद्र, कि ऐसा भक्त गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वो भगवान की कथा में रत हो करके आनंद समुद्र में ही मग्न रहता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वह एकांतिक भक्त होते हैं भगवान के, और ऐसे भक्त अपने आप को गजेंद्र के समान मानने लगते हैं। वो कहते हैं भगवान से, श्री पद्यावली में श्रील रूप गोस्वामी ने एक श्लोक में कहा कि कैसे जो एकांतिक भक्त होते हैं वे भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान मैं भी तो गजेंद्र के समान ही हूं, आप मुझे कब सहायता करेंगे। या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्रस्य मोक्षणे मय्यार्ता करुणा मूर्ते सात्वरा क्व गता हरे। तो भगवान के ऐसे भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि या द्रौपदी परित्राणे, हे भगवान, मैं जब द्रौपदी और गजेंद्र की कथा सुना, मैंने जब सुना कि आप द्रौपदी की करुण पुकार, गजेंद्र की आर्त पुकार को सुन करके एक बार में आ गए, ऐसी त्वरा आप में दिखाई दी, वो त्वरा अब कहां गई भगवान। तो बोलते हैं या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्रस्य मोक्षणे, जो गजेंद्र के समय आपने त्वरा दिखाई, जो द्रौपदी के उद्धार में आपने त्वरा दिखाई, वो जल्दबाजी वो अब कहां गई। मई आर्ता, मैं भी आर्त हूं भगवान। और ऐसे भक्त एकांतिक भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, मई आर्ता करुणा मूर्ते, हे करुणा मूर्ते, सा त्वरा, वह आपकी जल्दीबाजी, सा त्वरा क्व गत आहरे, वह आपकी त्वरा कहां चली गई। तो ऐसे अनन्य भक्त भगवान का चिंतन करते हुए भगवान को इतनी आसानी से पा जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि भवसागर कब पार हुआ। इसीलिए भगवान के भक्त, ऐसे भक्तों के प्रति भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं, भगवान ऐसे भक्तों के प्रति उनकी रक्षा करते हैं, जैसे गजेंद्र की रक्षा की। तथा नते माधव तावका क्वचित, भ्रशंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, जो भगवान के पथ पर चल दिए, तथा नते माधव तावका, आपके जो भक्त हैं क्वचित भ्रशंति मार्गा, वो कभी भी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। जिसमें उदाहरण दिया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में, दशम स्कंद की इस श्लोक की टीका में उदाहरण दिया इंद्रदुम महाराज की। इंद्रदुम महाराज को लगा कि इंद्रदुम महाराज को शापग्रस्त होकर के एक गज योनि में आना पड़ा, तो भ्रशंति मार्ग हो गए, अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, भगवान के भक्त यदि दिखे भी कि अपने मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं तो अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। उनकी भक्ति गज का जन्म पा करके इंद्रदुम महाराज की भक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, और यह प्राप्त हुआ गजेंद्र की कथा में। तो इसलिए ऐसे जो भक्त होते हैं, भ्रशंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया अभिगुप्ता विचरंती निर्भया, वह आपके द्वारा अभिगुप्त, आपके द्वारा रक्षित होते हैं और निर्भय रूप से विचरण करते हैं। विनायकानी कपमूर्धसो प्रभु, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। और कैसे रक्षा करते हैं? भगवान में इतनी त्वरा होती है ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए कि एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी एक दाक्षिणात वैष्णव महानुभाव के एक श्लोक को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कैसे भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की, कितनी त्वरा थी भगवान में। भगवान जब गजेंद्र की रक्षा कर रहे थे तो कहते हैं अतंद्रित चमुपति प्रहित हस्तमा स्वीकृत प्रणीत मणि पादुकम किमित विस्मृतांतःपुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहत करी प्रवर बृंहिते भगवत स्वरायै नमः। तो भगवान के ऐसे एक दाक्षिणात्य कवि श्री वैष्णव महानुभाव ये भगवान की गजेंद्र की लीला को स्मरण करते हुए भगवान को प्रणाम नहीं करते, कहते कि नहीं नहीं मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता, मैं भगवान की इस त्वरा उस जल्दीबाजी को प्रणाम करता हूं जिस जल्दीबाजी में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। कैसी जल्दीबाजी थी भगवान को? तो कहते हैं अतंद्रित चमूपति, भगवान के जो चमूपति, चमूपति का अर्थ होता है जो सेना है, भगवान की अनंत सेना और उनके अनंत सैनिक चंड प्रचंड कुमुद कुमुदेक्षण विश्वक्षेन सब सामने भगवान के खड़े रहते हैं वैकुंठ में, अतंद्रित और अतंद्रित तंद्रा रहित रहते हैं, वो बहुत सावधान रहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए कौन सा ऐसा कार्य आए और मैं सेवा कर दूं। तो गजेंद्र की जब रक्षा, गजेंद्र ने जब आर्त स्वर से पुकारा भगवान को, तो अतंद्रित चमूपति, चमूपति सामने विराजमान थे, चंद प्रचंड कुमुद कुमुदेक्षण विश्वक्षेन सब सामने थे भगवान के, अतंद्रित चमूपति प्रहित हस्तम स्वीकृता, प्रहित हस्तम उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि क्या भगवान मैं सहायता करूं, मैं जाऊं गजेंद्र को बचा ले आऊं। तो भगवान कहते हैं प्रहित हस्त अस्वीकृता, उनके हाथों को अस्वीकार कर दिया भगवान ने, नहीं तुम नहीं जाओगे। इतनी त्वरा थी, उस त्वरा में भगवान वैकुंठाधिपति अपने निवास से भागे गजेंद्र की रक्षा करते हुए, और जब भागे तो पीछे से उनके सेवक प्रणीत मणि पादुकम, उनके लिए मणि पादुका, हे भगवान अपनी पादुका तो लेते जाओ, उन्हें पुकार रहे हैं प्रणीत अपनी मणि पादुका को लेते जाओ। भगवान ने मणि प्रणीत मणि पादुकम किमित विस्मृतांतःपुरम, अपने अंतःपुर में उस मणि पादुका को भूल गए, इतनी त्वरा। किमित विस्मृतांतःपुरम, अंतःपुर में अपनी पत्नियों को भूदेवी श्रीदेवी उनसे भी नहीं पूछा मैं कहां जा रहा हूं, और किमित विस्मृतांतःपुरम अंतःपुर में उसे भूल गए, और अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहत, अवाहन परिष्क्रियम पतगराज, पतगराज अर्थ गरुण, गरुण के पास भगवान पहुंचे, बोले गरुण जल्दी चलो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, गजेंद्र मुझे पुकार रहा है। अवाहन परिष्क्रियम, गरुड़ जी बोले कि भगवान मेरी पीठ बहुत रूखी है, ऐसा करता हूं मैं थोड़ी गद्दी तकिया बिछा लेता हूं तब आप बैठना, आप इस रूखी पीठ पर कैसे बैठोगे। भगवान कहे अवाहन परिष्क्रियम, भूल जाओ उस गद्दी तकिए को। भगवान पतगराजम आरोहता, इतनी त्वरा थी भगवान को कि पतगराज गरुण पर वहीं पर बैठ गए। गरुण विचार कर रहे हैं कि यदि हनुमान जी होते, उनकी कंधे कितने कोमल हैं, राम लला को बैठा करके सीताराम को बैठा करके वे जब आरोहण करते हैं वे भगवान को ले चलते हैं, मेरी पीठ इतनी रूखी है और भगवान जल्दीबाजी में गद्दी तकिया भी कसने नहीं दिए। तो ऐसे कहते हैं करी प्रवर ब्रिंग हिते, करी प्रवर करी का अर्थ है हाथी, जिसका कर हो उसे कहते हैं करी। हाथी के पास चार पैर होते हैं और एक कर होता है सूंड रूप में, जिसे वो हाथ रूप में प्रयोग करता है। तो करी प्रवर, ऐसे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए करी प्रवर बृंगहिते भगवतस्त्वराय नमः, जो भगवान की त्वरा थी, जो भगवान की जल्दीबाजी थी, मैं उसको प्रणाम करता हूं। एक वैष्णव महानुभाव तो यहां तक कह दिया कि भगवान जब गजेंद्र की रक्षा करने चले तो वो सोचने लगे कि ये गरुड़ इतना धीमा क्यों चल रहा है। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आ रहे थे और बीच में उन्होंने गरुड़ का त्याग करके स्वयं कूद करके चक्र को चला करके मार दिया उस ग्राह को। तो ऐसे भगवान की त्वरा, इसलिए ये जो एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, वास्तव में गजेंद्र पर भी है। गजेंद्र ऐसे एकांतिक भक्त हैं, ऐसे जो केवल और केवल भगवान को, भगवान से प्रार्थना किए, अत्यद्भुतम चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। और ऐसे एकांतिक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान में ऐसी त्वरा देखी जाती है। तो ये है गजेंद्र, जिन्होंने भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना की और भगवान की कृपा प्राप्त करके वह उसी शरीर से, गजेंद्र के विषय में बताया गया श्रीमद् भागवत में कि गजेंद्र का शरीर नहीं छूटा, ऐसा नहीं कि उस शरीर को छोड़ा, भगवान ने उसी शरीर को दिव्य बना करके गजेंद्र को भगवत धाम लेके चले गए। तो ये है गजेंद्र की प्रार्थना, यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील